नमस्कार। कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में होंगे मुख्य समाचार। चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर और उन विशिष्ट व्यक्तित्व को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। परिक्रमा के इस अंक में मैं हूं धर्मेन्द्र मणि राजेश और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुस्तफा। सायरा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार धर्मेन्द्र, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। धर्मेन्द्र हैज ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट टू लुक फॉरवर्ड टू, तो ज्यादा वक्त जाया नहीं करते हैं धर्मेन्द्र और सीधे सुनाते हैं अपने लिसनर्स को ताजा तरीन हेडलाइंस। एंड द फर्स्ट हेडलाइन इज ऑफकोर्स रिलेटेड टू द बजट। डिस्कशन रिज्यूम्स इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ऑन बजट 2024-25। पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू अक्यूजेज ऑपोजिशन फॉर डूइंग पॉलिटिक्स ऑन बजट डिबेट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर करगिल युद्ध स्मारक का दौरा करेंगे।
हैवी रेनफॉल रीक्स हैवॉक इन पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। आईएमडी प्रेडिक्ट्स एक्सट्रीमली हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल ओवर वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज।
विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आसियान मैकेनिज्म की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए 3 दिवसीय दौरे पर लाओस पहुंचे।
Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu addresses a joint session of US Congress, seeks US support for war against Hamas in Gaza Strip.
और भारत का पेरिस ओलंपिक अभियान शुरू, व्यक्तिगत रैंकिंग राउंड में तीरंदाजी की शुरुआत।
एंड धर्मेन्द्र, हस्बे दस्तूर, हम लोग हर दिन एक नया टॉपिक लेके आते हैं इन परिक्रमा इन आवर सेगमेंट डेटलाइन इंडिया। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे। सो वेल, पीपल ड्राउन सैडली थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू वेरियस कॉजेज। इट कैन हैपन इन अ मैटर ऑफ फ्यू सेकेंड्स एंड कैन बी वेरी ट्रोमैटिक फॉर द पीपल हु आर लेफ्ट बिहाइंड। World Drowning Prevention Day was declared through April 2024 UN General Assembly Resolution Global Drowning Prevention, which is held annually on 25th of July. This global advocacy event serves as an opportunity to highlight the tragic and profound impact of drowning on families and communities and offer life-saving solutions to prevent it. And agar aankdon ki baat ki jaye Dharmendra, it's a staggering 2,36,000 people drown every year. Drowning is among the 10 leading causes of death for children aged 5 to 14 years. And more than 90% of drowning deaths occur in rivers, lakes, wells, domestic water storage vessels and swimming pools in low and middle income countries, with children and adolescents in rural areas disproportionately affected. In fact, abhi recently ek WhatsApp video bada viral hua tha, aapne dekha tha, puri family ki family jo teerth pe gayi thi, while they were crossing the river, they drowned.
Ji haan, bilkul, kai baar aise avsar aate hain jab photography ke shauk mein hum aisi jagah par chale jate hain jahan ki andaza nahi hota ki पानी की तेज धार आने वाली है, अचानक पहाड़ी इलाकों में ऐसा होता है और ऐसे जो है दुर्घटनाएं अक्सर हो जाती हैं। अगर हम हर साल की बात करें तो भारत सहित दुनिया भर में लाखों लोग डूबने से असमय मर जाते हैं। पीड़ित परिवारों और समुदायों पर डूबने के दुखद गहन प्रभाव को उजागर करना आवश्यक है, साथ ही इसे रोकने के लिए जीवन रक्षक समाधान पेश करने का अवसर प्रदान करने की भी जरूरत है। इन सभी मुद्दों पर वैश्विक स्तर पर सामूहिक जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25 जुलाई को, जैसा आपने बताया, विश्व डूबने से बचाव का दिवस मनाने के प्रस्ताव पर सहमति दे दी।
यस, एंड इन फैक्ट दीज डेज स्पेशली इन दिल्ली एनसीआर वी हैव सीन के जाहिर है लोग वीकेंड्स पे चाहते हैं कि दे गो एंड स्पेंड गुड टाइम, सो दे बुक ऑल दीज फार्म हाउसेज। एक बड़ा ट्रेंड चला है एंड अ लॉट ऑफ मिसहैप्स हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम दीज फार्म हाउसेज वेयर दे हैव स्विमिंग पूल्स। पीपल गेट ड्रंक एंड यू नो दे गेट टिप्सी एंड देन दे ड्राउन। इमेजिन जस्ट अ फ्यू फीट ऑफ वाटर बट स्टिल इट कैन टेक योर लाइफ। All stakeholders, governments, UN agencies, civil society organizations, the private sector, academia and individuals, they are invited to mark the World Drowning Prevention Day by highlighting the need for urgent, coordinated and multi-sectoral action on proven measures such as installing barriers, controlling access to water, providing safe places away from water such as creches for preschool children with capable childcare. टीचिंग स्विमिंग वाटर सेफ्टी एंड सेफ रेस्क्यू स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर हम लोग बच्चों की सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देते हैं लेकिन ये जो लाइफ स्किल्स हैं, स्विमिंग इज आई वुड से इट्स अ लाइफ स्किल एंड नॉट जस्ट यू नो एनी अदर स्पॉट, सो इट शुड बी टॉट टू एवरी चाइल्ड। इवन ट्रेनिंग बाय स्टैंडर्ड इन सेफ रेस्क्यू एंड रिसेसिटेशन, setting and enforcing safe boating, shipping and ferry regulations and improving flood risk management.
और वैसे अगर हम बात करें डूबने से होने वाली मौतों को रोकने के लिए क्या कुछ जरूरी उपाय किए जाएं, तो पानी तक पहुंच को नियंत्रित करने वाली बाधाएं स्थापित की जानी चाहिए. छोटे बच्चों के लिए पानी से दूर सुरक्षित स्थान प्रदान करना, जैसे कि सक्षम चाइल्ड केयर की व्यवस्था हो, तैराकी, जल सुरक्षा और सुरक्षित बचाव कौशल सिखाना, सुरक्षित बचाव और पुनर्जीवन में राहगीरों को प्रशिक्षित करना, सुरक्षित नौकायन, शिपिंग और नौका विनियमन स्थापित करना और लागू करना, बाढ़ जोखिम प्रबंधन में सुधार करना. कई बार बाढ़ आते हैं और कई लोग उसमें डूब जाते हैं, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि जब बारिश होती है कहीं पानी जमा होता है, बच्चे उसमें नहाने के लिए जाते हैं और वो जो है काफी खतरनाक होता है. कई ऐसे हादसे हुए हैं जब कोई बच्चा डूब रहा होता है, उसका साथी उसको बचाने जाता है, फिर उसके साथ कई बच्चे डूब जाते हैं. तो ये सब जो अभिभावक हैं उनको ध्यान रखने की जरूरत है.
एब्सोल्युटली. और जैसे आपने बताया कि जो बचाने जाते हैं कई बार वो भी डूब जाते हैं, सो वी शुड रिमेम्बर हाउ टू इवन रेस्क्यू अ ड्राउनिंग पर्सन. एंड देयर इज अ फेमस फ्रेज दैट सेज, throw, don't go. The only person who should go in the water to rescue someone drowning is a lifeguard or rather emergency first responder. Going in the water to help someone in trouble can also put yourself in danger of drowning. To assist someone in trouble, it is best to stay out of the water yourself. And here is how to safely perform a rescue operation. First of all, steady yourself and use an object to increase your reach, such as a tree branch, a pole or another long object. Extend the object to the person in trouble and slowly pull them to safety. To avoid being pulled into the water yourself, keep your body low and lean back. If the person in trouble is out of your reach, throw something to them that floats, such as a life jacket or another floating object like a ball or even a cooler. Seek out a professional. This is very important. Yani ki aap khud usme kood padein, because you don't know exactly the, you can say, the nuances of how to rescue a drowning person. And after the person at risk of drowning is safely out of the water, check the ABCs, that is airway, breathing and circulation, and have someone call for an emergency first responder. Iske alawa bhi kafi precautions hain jo le sakte hain. And especially in summer vacation, we see Dharmendra ki parents ko badi chaah hoti hai ki unke bacche kisi na kisi activity ko seekhein. They enroll their children in swimming classes without checking whether that swimming pool that they are sending their child to has adequate safety measures or not. So it's important to build fences that fully enclose the pools, and these fences should at least be 4 feet in height. And of course, the children especially should be supervised closely. Wearing a life jacket is very important if you're probably out there in the river. Definitely, definitely avoid alcohol. It's just a big no-no to, to be drunk and then go into the pool. It will just increase your chances of drowning manifold. And also consider the effects of medications. Avoid swimming if you take medications that impair your balance, coordination or judgment. These side effects increase the risk of drowning. Several medications can produce these side effects, such as those used for anxiety and other mental health conditions. Don't hyperventilate or hold your breath for a long time. This is, of course, very important, that don't hyperventilate before swimming underwater, or try to hold your breath underwater for a long period of time. This can cause you to pass out and drown. This is sometimes called hypoxic blackout or shallow water blackout. So this was our segment, Dateline India. A very important topic, Dharmendra, for today, and I hope our listeners probably got some very enriching points from here.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है.
तो इस सिलसिले में सबसे पहले हम लोग कहां चल रहे हैं धर्मेंद्र?
पृथ्वी पर बढ़ता तापमान सायरा पूरे विश्व के लिए आज चिंता का विषय है.
right.
और पर्यावरण के संरक्षण के लिए आज ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाना समय की मांग है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सभी नागरिकों से अधिक पेड़ लगाकर प्रकृति को बचाने का आह्वान किया है. ऐसे में आज हम मिलते हैं गुजरात के पाटन जिले के पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध एक योद्धा से, जिनका नाम है नीलेश राजगोर, जिन्होंने पिछले 8 सालों में 8 लाख से अधिक पेड़ लगाकर पर्यावरण रक्षा की दिशा में बहुमूल्य योगदान दिया है. सुनते हैं हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट.
ग्रीन कमांडो नीलेश राजगोर पाटन जिले के कुंघेर गांव से है. पर्यावरण संरक्षण की लड़ाई में प्रतिबद्ध नीलेश भाई अब तक अपने क्षेत्र में 8 लाख से ज्यादा पेड़ लगा चुके हैं. नीलेश भाई ने यह मुहिम 2015 में शुरू की थी और आज वह कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। उनके अभियान का महत्वपूर्ण पहलू जनभागीदारी है। वे अब तक 3 लाख से ज्यादा लोगों को वृक्षारोपण की शपथ दिला चुके हैं। पर्यावरण संरक्षण के इस उत्कृष्ट योगदान के लिए नीलेश भाई को कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। उन्हें वर्ष 2021-22 में जलवायु परिवर्तन पुरस्कार भी मिला था। नीलेश भाई के इन प्रयासों से हरित पदचिन्ह को बढ़ाने के साथ साथ सतत विकास को भी गति दी है।
लाखों पेड़ जो आज बड़े हो गए और जो पंछी जो अलग अलग जीव सृष्टि है तो वो जो पलप रही है और जो प्रकृति का सही मायने में संरक्षण और संवर्धन हो रहा है, जो लुप्त हो रही थी वनस्पतियां पंछी, जो लुप्त हो रही थी वाइल्ड लाइफ, उसके लिए कुछ ना कुछ हम कर रहे हैं, एक सुकून मिलता है और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं। आज लाखों लोग हमसे जुड़े हैं, लाखों लोगों ने प्रेरणा लेके अपने अपने गाँव में काम शुरू किया है।
भावी पीढ़ी में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना उनका लक्ष्य है। पाटन जिले के इस प्रकृति प्रेमी के प्रयासों से पाटन जिले को हरा भरा बना दिया है। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे नीलेश भाई जनशक्ति का एक जीवंत उदाहरण है। परिक्रमा के लिए अहमदाबाद से मैं अपर्णा खुंट।
पेरिस ओलंपिक का कल औपचारिक उद्घाटन होना है, लेकिन उससे पहले आज भारत की महिला टीम तीरंदाजी की टीम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। अंकिता भगत, भजन कौर और दीपिका कुमारी की टीम आज रैंकिंग राउंड में चौथे स्थान पर रही। अंकिता 11वें, भजन 22वें और दीपिका 23वें स्थान पर रही। भारतीय टीम 1983 अंकों के साथ 11वें स्थान पर रही। दक्षिण कोरिया 2046 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा। चीन दूसरे और मैक्सिको तीसरे स्थान पर रहा। अंकिता ने आज भारत के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन किया और उन्होंने सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। दीपिका लय हासिल करने के लिए जूझती रहीं। लिमसियोन 694 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहीं और यह विश्व रिकॉर्ड प्रदर्शन रहा। ओलंपिक में और क्या कुछ चल रहा है, इसको जानने के लिए चलते हैं अपने सहयोगी शौर्य चौधरी के पास।
यस शौर्य, कैन यू हियर अस?
यस यस, आई कैन हियर यू।
Alright, Shaurya, so the archery ranking events have started. They are already taking place in Paris right now. What is the current status?
Right. It's a warm, pleasant day here in Paris with a gentle breeze blowing. In other words, the conditions were suitable for the best women archers in the world to give their best in the ranking round that decides seedings for the team and individual medal rounds. And the Indian women's team, consisting of 4-time Olympian Deepika Kumari and Olympic debutants Ankita Bhaktat and Bhajan Kaur, ended a creditable 4th in the team seedings after a seesaw ranking event here at the Laws of Holiday. India finished on 1983 points with 83 perfect tens. South for Ankita Bhaktat was India's best performer and consistently shot to perfection, finishing on a season best score of 666. Deepika Kumari came back strong in the back half of 36 arrows to come 23rd overall with 6 bullseyes and a score of 658. Bhajan Kaur also maintained her momentum to come 22nd with a score of 659. She had 25 perfect tens to Deepika's 28. The Indian archers told us that they were happy with the outing but need to iron out a few areas before the medal round. And as mentioned, there was a world record on show, Lim Si-hyun from Korea. She shattered all records, canted to 694 points in the ranking round to make a world record, a brilliant performance there. And the men's ranking event will commence in an hour with star archers Tarundeep Rai, Dheeraj Bomma Devara and Praveen Jadhav gunning for top spots.
Shaurya, kal udghatan samaro hona hai. Iske alawa jo hai, kal Bharat ke liye kya kuch khas hai?
So, as you know, India has sent a strong 117 contingent team to Paris and are competing in 16 sports. Tomorrow is reserved for the glittering opening ceremony at the River Seine, but on the 27th there will be badminton group stage matches, boxing prelims, and India's group stage hockey game against New Zealand. These are all prospective medal-winning sports for India. There will also be tennis, table tennis matches as well, where India is fielding a very strong contingent. These sports will take place in and around Paris. Meanwhile, another very big sport for India, shooting, right, will commence in Chaturo, which is a town about 250 kilometers away, and where India will be gunning for multiple medals. That's
right,
it from Shaurya Chaudhary from Paris for now.
Right. Thank you so much, Shaurya, for that live update from Paris. And Dharmit, ab hum keh sakte hain ki humne khali desh ki parikrama nahi ki, lekin aaj listeners ko Paris tak le gaye. Aur khair, ab wapas aate hain apne desh ki parikrama karte hue. Now we are heading towards Jaipur.
Ji haan, aur Gulabi Shahar ke suprasiddh Jawahar Kala Kendra mein इन दिनों नटराज महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह महोत्सव 23 जुलाई को शुरू हुआ है और 28 जुलाई तक चलेगा। एक रिपोर्ट।
6 दिवसीय नटराज महोत्सव में रंगमंच के साथ गायन व नृत्य की प्रस्तुतियां हो रही है। मनीषा गुलियानी के कथक और मोहम्मद अमान के शास्त्रीय गायन प्रस्तुति के साथ 23 जुलाई को समारोह का शुभारंभ हुआ था। इस महोत्सव के तहत कल इम्तियाज खान के निर्देशन में सुप्रसिद्ध नाटक द शेडो ऑफ ओथेलो का मंचन हुआ। आज शाम देशराज गुजर के निर्देशन में गोवर्धन के जूते नाटक का मंचन होगा। कल योगेंद्र सिंह के निर्देशन में हेनरिक इप्सन द्वारा लिखित बहुचर्चित नाटक एन एनिमी ऑफ द पीपल का प्रदर्शन होगा। 27 जुलाई को विशाल भारद्वाज के निर्देशन में प्रसिद्ध नाटक 12 एंग्री मैन का मंचन होगा। 28 जुलाई को संवाद प्रभा का आयोजन होगा, जिसमें भारत रत्न भार्गव, आलोक चटर्जी, प्रेरणा श्रीमाली और जयंत देशमुख विचार रखेंगे। परिक्रमा के लिए जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी।
पिछले दिनों राजधानी दिल्ली के दिल्ली हाट में मेघालय राज्य सरकार द्वारा आयोजित पाइन एप्पल महोत्सव का दूसरा संस्करण सम्पन्न हुआ। सुनते हैं हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट।
पाइन एप्पल महोत्सव के दौरान मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने मेघालय किसान बाजार का दौरा किया और किसानों और उद्यमियों के साथ बातचीत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री संगमा ने कहा कि सरकार ने पाइन एप्पल बाजार के विकास के लिए वर्ष 2023 में बुनियादी ढांचे में 5.63 करोड़ रुपए एवं कार्यशील पूंजी के रूप में 1.39 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप जबरदस्त उपलब्धियां हासिल हुई हैं, जिसमें अबू धाबी को 4.36 मीट्रिक टन अनानास का निर्यात भी शामिल है। मेघालय के रिभोई जिले के प्राइम हब में पाइन एप्पल के क्यूब्स को फ्रिज में सुखाने की सुविधा उपलब्ध कराने के बाद 300 मीट्रिक टन पाइन एप्पल को यूरोपीय संघ के देशों में निर्यात किया जाने लगा है। उन्होंने कहा कि इन पहलों से किसानों की आय में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने के उद्देश्य से पहले ही कई निर्यात उन्मुखी पाइन एप्पल प्रसंस्करण केंद्र बनाए हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में संपन्न हुए मेघालय पाइन एप्पल महोत्सव के दौरान हजारों लोगों ने न केवल राज्य के जैविक रूप से उगाए गए अनन्नास का आनंद लिया, बल्कि उन्होंने मेघालय ग्रास रूट म्यूजिक का जीवंत प्रदर्शन भी देखा। ये कहना उचित ही होगा कि मेघालय के अनन्नास महोत्सव के दूसरे संस्करण ने न केवल मेघालय की कृषि उत्कृष्टता को उजागर किया, बल्कि लोगों को संगीत और कला के माध्यम से एक जीवंत सांस्कृतिक अनुभव भी प्रदान किया। आकाशवाणी शिलांग से परिक्रमा के लिए परितोष दीक्षित।
Supreme Court Judge Justice Sanjeev Khanna has said that Lok Adalats or People's Courts are the backbone of our alternative dispute resolution mechanism. He added that Lok Adalats play a vital role in resolving disputes outside of traditional courtroom settings. In an exclusive interview with Akashvani News, Justice Khanna encouraged litigants to participate in the upcoming special Lok Adalat that's scheduled from the 29th of this month to the 3rd of next month.
We are very happy to announce special local adalat being organized by the Supreme Court of India from 29th July to 3rd August 2024 to commemorate the 75th anniversary of the Supreme Court. Lok adalats or people's court are the backbone of our alternate dispute resolution mechanism. Lakhs of people have taken benefit of this alternate dispute resolution mechanism, which empowers the people themselves to decide the relief or the claim they have. Lok Adalats or People's Court is a very useful mechanism which has been developed by NALSA to enable people to themselves resolve their disputes and settle their claims by mutual adjustments of their rights. Supreme Court of India primarily deals with constitutional matters, but guided by the principle of access to justice for all, we do entertain even smaller and personal disputes. This is an opportunity for all litigants who have come to the Supreme Court to get their disputes, be it matters relating to property, matrimonial matters, motor accident claims, even small service matters, by mutual agreement and settlement. Once you enter into the mutual agreement and settlement, we will be able to dispose of all cases pending before us and even before the High Court or the Trial Court. To enable you to connect and get access to the Lok Adalat, we have taken advantage of the technology and you can appear through video conferencing. We have made arrangements to enable you to interact with us through the medium of district legal services authorities, where technology is being upgraded to ensure that you can get in touch with us.
I
wish the special drive will be a success, and I hope and trust the advocates on records as well as litigants will take advantage of this move.
प्रेरणा के स्वर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज इस विशेष कार्यक्रम को आप शाम 7:25 पर सुन सकते हैं एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर।
एंड नाउ इट्स टाइम फॉर आजादी का सफर।
इन टुडेज़ एपिसोड वी रिमेम्बर नेशनलिस्ट स्कॉलर आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, who was born on July the 25th, 1894, in Jawahi village, Balia district of Uttar Pradesh. He is considered to be the most authoritative and accepted scholar of the Saint tradition and helped in revitalizing the Indian civilizational ethos in the times when the country was fighting against the British imperialist regime.
Educated at Allahabad and Varanasi University, Parashuram was a lawyer by profession, but had a keen interest in spiritual literature. He was a scholar of many dialects of Sanskrit and Hindi. He was a supporter of free thinking and evolutionary theory in literature. His life was devoted to the welfare of humanity.
In his books, Bhartiya Sahitya Ki Sanskritik Rekhaen and Sant Sahitya Ki Parakh, Parshuram gave place to the saints of Sanatan sect as well as the Sufis, worshippers of Sagun and Nirgun Bhakti streams, Nath Panthis and saints belonging to the sect of Jungam Jogdas. In his book, Uttar Bharat Ki Sant Parampara, Acharya Chaturvedi considered Mahatma Gandhi to be the last saint.
Acharya Parshuram Chaturvedi died on the 3rd of January, 1979. We salute the great Indian. We also remember martyr Shridev Suman. He was born on the 15th of May, 1915 in Tihri, Garhwal, Uttarakhand. Shridev Suman took an active part in the Salt Satyagraha of 1930. He became a member of the Standing Committee of Lok Parishad in 1936.
A prolific writer, he wrote on the socio-political issues of Tihri Garhwal state. Shridev Suman also participated in the Quit India movement in Garhwal division in 1942, for which he was arrested twice and put behind the bars. He was arrested again and imprisoned in the Tihri state jail on the 13th of December 1943, where he died in the jail on the 25th of July 1944. We salute the brave martyr.
We also remember nationalist M. Alagappa Manikavellu Naikar, who died on the 25th of July, 1996.
After independence, Manikavellu founded the Commonweal Party and served as the Minister of Revenue for the Madras state. He also served as a member of the Rajya Sabha from 1962 to 1964. During the 1964-1970, he was the chairman of the Tamil Nadu Legislative Council. Till his death in 1996, M.A. Manikavellu continued to serve the nation. We salute the great Indian.
We also remember Martyr Hriday Shah, Chulkan Lodi, Lal Dulare Lal, who belonged to Madhya Pradesh. They took active part in the First War of Independence in 1857. They were caught by the British troops during an encounter and charged with desertion and mutiny. Hriday Shah, Chulkan Lodi, Lal Dulare Lal was sentenced to death and executed by hanging on the 25th of July, 1857. We salute the brave martyrs.
And time for business news now. India's equity benchmark indices, Sensex and Nifty, ended in red with slight declines today. Sensex declined 109 points to close at 80,040. 40 and Nifty shed 7 points to close at 24,406. And in global commodity exchange for 5th August contract, gold was trading at 67,860 rupees per 10 grams, while silver was trading at 81,725 rupees per kg when reports last came in.
और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल.
यस, धर्मेंद्र इन विमेन एशिया कप क्रिकेट सेमीफाइनल्स, डिफेंडिंग चैंपियंस इंडिया विल टेक ऑन बांग्लादेश, वाइल होस्ट श्रीलंका विल फेस पाकिस्तान टुमारो इन दाम्बुला. श्रीलंका रजिस्टर्ड अ थंपिंग 10 विकेट विक्ट्री ओवर थाईलैंड इन द फाइनल ग्रुप फिक्स्चर इन दाम्बुला यस्टरडे.
और अब उन हस्तियों को याद करने का समय है, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें तो वो हस्तियां जिन्होंने आज इस दुनिया को अलविदा कहा या फिर आज के दिन इस दुनिया में कदम रखा. पहले बात कर लेते हैं गोदावरीश मिश्र की. उड़ीसा के प्रसिद्ध समाज सुधारक और साहित्यकार गोदावरीश मिश्र का आज के दिन निधन हुआ था. उन्होंने कविता, नाटक, उपन्यास, कहानियां तथा जीवन चरित्र आदि लिखे हैं. भारतीय साहित्य अकादमी ने उनकी आत्मकथा को पुरस्कृत किया था. राष्ट्रीय नवजागरण के क्षेत्र में भी गोदावरीश मिश्र की लेखनी का बड़ा योगदान रहा. उनकी आत्मकथा को भारतीय साहित्य अकादमी ने उनकी मृत्यु के बाद पुरस्कृत किया था. उनके कुछ कविता संग्रह की अगर हम बात करें तो कुसुम, कलिका, किसलय, आलेखिका, कवितायन, चयनिका और गीतायन है. साथ ही साथ आज अगर हम बात करें तो प्रसिद्ध फिल्म लेखक और निर्देशक बीआर इशारा का भी निधन हुआ था. बीआर इशारा यानी बाबूराम इशारा ने एक लंबा संघर्षशील जीवन जिया. इशारा को समाज के बर्निंग इश्यूज पर फिल्मों के लिए जाना जाता है. सुनते हैं उनकी फिल्म चेतना का ये गीत.
मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, मेरी आवाज को, दर्द के साज को तू सुने ना सुने. मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, मुझे देख कर कह रहे हैं सभी, मोहब्बत का हासिल है जीवन.
Today we are also remembering Vishwanath Vaman Bapat, a Marathi poet, and of course he had also served as the Rabindranath Tagore chair at Mumbai University. Very few people know that he was also part of the freedom struggle and participated in the Quit India movement of 1942. He has penned 30 poetry books, including immensely popular Bijli, Setu, Akrav Disha, Sakina and Mansi. The trio of poets Bapat, Vinda Karandikar and Mangesh Patgaonkar provided for many years public recitals of their poetry in different towns of Maharashtra. And as an official representative of India, Bapat participated in 1969 in an international poetry conference in Yugoslavia as well. Today we are also remembering Rageshwari on her birthday today, and kids of 90s would remember her song Ye Duniya Badi Rangili. Here is wishing Rageshwari a happy birthday with her song.
Maine dekhe sabhi rang duniya ke, are ha ye duniya badi rangili, har ras mein naya hai nasha iske, are ha ye duniya badi nasheeli.
And now, of course, before we wrap up our show, we should just tell our listeners quickly that Rageshwari has also acted in some Hindi films. Mumbai Se Aaya Mera Dost, Tum Jo Hazaro Saal, Dil Kitna Nadaan Hai, Main Khiladi Tu Naadi, Zid, Dil Aa Gaya and Aankhein. And now it's time to call a wrap, Dharmendra.
Ji haan, to shrotaon, ab samay ho chala hai aapse anumati lene ka. Ijazat dijiye Dharmendra Mani Rajesh aur Saira Mujtaba ko. परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की.
Yes.
नमस्कार करना चाहेंगे शायरा
जी? बिल्कुल. एंड जस्ट टू टेल योर लिसनर्स दैट इफ दे वांट टू लिसन टू द शो वंस अगेन देन प्लीज गो टू द वेबसाइट. नमस्कार.
नमस्कार.